कैसे ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के सामने आत्मसमर्पण किया। 1949 में इसराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित करना और संयुक्त राष्ट्र में उसका सदस्यता प्राप्त करना 20वीं सदी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो कूटनीति, भू राजनीति और हिंसा के अस्थिर मिश्रण से प्रेरित था। इस प्रक्रिया के केंद्र में ज़ायोनी चरमपंथी समूहों, विशेष रूप से इरगुन और लेही के कार्य थे, जिनके अत्यधिक हिंसक कृत्य, जिन्हें आधुनिक मानकों के अनुसार अब आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ने ब्रिटेन पर पैलेस्टाइन मंडेट को छोड़ने के लिए दबाव बनाने और संयुक्त राष्ट्र को इसराइल को मान्यता देने के लिए मजबूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह लेख तर्क देता है कि ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र इन हिंसक अभियानों से अभिभूत होकर प्रभावी रूप से ज़ायोनी आतंकवाद के सामने झुक गए और इसराइल की राज्यता को स्वीकार कर लिया, भले ही उसने संयुक्त राष्ट्र की शर्तों, जिसमें विभाजन योजना, शरणार्थी अधिकार और मानवाधिकार दायित्व शामिल थे, का केवल आंशिक रूप से पालन किया। यह लेख ब्रिटिश मंडेट के पैलेस्टाइनी अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए ज़ायोनी समूह की रणनीतियों, इसराइल की संयुक्त राष्ट्र मान्यता की शर्तों और इसराइल की क्षेत्रीय विस्तार के साथ होने वाले गैर अनुपालन और मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है। ब्रिटिश मंडेट और पैलेस्टाइनी लोगों के प्रति इसकी जिम्मेदारियां। 1922 में राष्ट्रसंघ द्वारा औपचारिक रूप से स्थापित ब्रिटिश मंडेट फॉर पैलेस्टाइन एक कानूनी ढांचा था, जिसे पूर्व ऑटोमन क्षेत्र का प्रशासन करने और इसे स्वशासन के लिए तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इसमें 1917 की बॉलफोर घोषणा शामिल थी, जिसमें ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता जताई थी। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो मौजूदा गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाए। 1920 के दशक की शुरुआत में पैलेस्टाइन की आबादी लगभग 90% अरब, मुस्लिम और ईसाई और 10% यहूदी थी, इसलिए पैलेस्टाइनी अधिकारों की रक्षा एक मुख्य दायित्व था। मंडेट के पैलेस्टाइनी लोगों के लिए प्रमुख प्रावधानों में उनके नागरिक और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा, यह सुनिश्चित करना कि यहूदी आप्रवास उनकी स्थिति को नुकसान न पहुंचाए, उनकी धार्मिक संस्थाओं का सम्मान सुनिश्चित करना और बिना भेदभाव के अंतरात्मा की स्वतंत्रता, पूजा और शिक्षा की गारंटी देना शामिल था। ब्रिटेन को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रसंघ को करना आवश्यक था। हालांकि मंडेट के दोहरे उद्देश्य यहूदी राष्ट्रीय घर का समर्थन करना और साथ ही पैलेस्टाइनी अधिकारों की रक्षा करना असंगत साबित हुए। यहूदी आप्रवास 1917 में 60,000 से बढ़कर 1947 तक 6 लाख हो गया और भूमि खरीद ने अरबों में विस्थापन की आशंका को बढ़ाया। ब्रिटेन के साझा शासन बनाने के प्रयास, जैसे कि एक विधायी परिषद, अरबों के बहिष्कार और यहूदियों की अल्पसंख्यक स्थिति की चिंताओं के कारण विफल हो गए, जिससे तनाव बढ़ गया। ज़ायोनी चरमपंथी हिंसा, आतंकवाद की एक मुहिम। ज़ायोनी संगठन, जो एक यहूदी राज्य के लक्ष्य से प्रेरित थे, 1940 के दशक में, विशेष रूप से 1939 के श्वेत पत्र के बाद, जिसने 5 वर्षों में यहूदी आप्रवास को 75,000 तक सीमित किया गया और एक एकीकृत पैलेस्टाइनी राज्य की परिकल्पना की गई थी, उग्रवादी बन गए। मेनकेम बेगिन के नेतृत्व में इरगुन और स्टर्न गैंग के नाम से जाना जाने वाला लेही ने ब्रिटिश शासन को असंभव बनाने के लिए अत्यधिक हिंसा अपनाई, जिसमें सैन्य, नागरिक और कूटनीतिक लक्ष्यों पर हमले किए गए, जो आधुनिक आतंकवाद की परिभाषाओं को पूरा करते हैं। उनका लक्ष्य एक ग्रेटर इसराइल था, जिसमें पूरे मंडेट पैलेस्टाइन, जिसमें वेस्ट बैंक और ट्रांसजॉर्डन शामिल थे, शामिल था, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विभाजन योजना जैसे समझौतों को खारिज कर दिया। प्रमुख हिंसक कृत्य। 1. सैन्य लक्ष्य। फरवरी 1946 में इरगुन और लेही ने ब्रिटिश हवाई अड्डों पर 15 विमानों को नष्ट कर दिया और 8 को क्षतिग्रस्त किया, जिससे सैन्य नियंत्रण कमजोर हुआ। जुलाई 1947 में इरगुन ने निष्पादित सदस्यों के बदले में ब्रिटिश सर्जेंट्स क्लिफर्ड मार्टिन और मार्विन पेस को अपहरण कर लिया और फांसी दी, जिसने ब्रिटिश जनमत को स्तब्ध कर दिया और संघर्ष की क्रूरता को उजागर किया। 2. नागरिक बुनियादी ढांचा। जून 1946 में हगनाह, इरगुन और लेही ने पैलेस्टाइन को पड़ोसी देशों से जोड़ने वाले 11 में से 9 पुलों को नष्ट कर दिया, जिससे क्षेत्र अलग थलग हो गया और ब्रिटिश रसद व्यवस्था बाधित हुई। जुलाई 1946 में इरगुन ने यरूशलेम में किंग डेविड होटल, जो ब्रिटिश प्रशासनिक मुख्यालय था, को बम से उड़ा दिया, जिसमें 91 लोग मारे गए, 41 अरब, 28 ब्रिटिश, 17 यहूदी, जिसने शासन को गंभीर रूप से कमजोर किया। 3. नागरिकों पर हमले। इरगुन ने हाइफा और यरूशलेम में अरब बाजारों पर बमबारी की, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और सामुदायिक तनाव बढ़ा, जिससे व्यापक भय फैल गया। अप्रैल 1948 में इरगुन और लेही ने देयर यासीन में 100 से अधिक पैलेस्टाइनी ग्रामीणों, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, की नरसंहार किया, जिसने पैलेस्टाइनी लोगों के सामूहिक पलायन को शुरू किया और शरणार्थी संकट को तेज किया। 4. विदेशों में ब्रिटिश परिसरों पर हमले। अक्टूबर 1946 में इरगुन ने रोम में ब्रिटिश दूतावास पर 40 किलो टीएनटी से बमबारी की, जिसमें दो लोग घायल हुए और इमारत को नुकसान पहुंचा, जिसमें बेगिन के सहयोगी ज़ीव एप्सटीन शामिल थे। अगस्त 1947 में इरगुन ने वियना के होटल सेशर में ब्रिटिश मुख्यालय पर सूटकेस बम विस्फोट किए, जिससे हल्का नुकसान हुआ लेकिन प्रचार प्रभाव बढ़ा। 5. उच्च स्तरीय अधिकारियों की हत्याएं। नवंबर 1944 में लेही ने मध्य पूर्व के लिए ब्रिटिश मंत्री लॉर्ड मॉयनी की काहिरा में हत्या कर दी, जो ब्रिटिश प्राधिकार के प्रति अवज्ञा का संकेत था। सितंबर 1948 में लेही ने यरूशलेम में संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ फोल्के बर्नाडोट की हत्या कर दी, जो उनके संशोधित विभाजन योजना का विरोध कर रहे थे, जिसमें यहूदी क्षेत्र को कम किया गया था और शरणार्थियों की वापसी पर जोर दिया गया था। अतिरिक्त रणनीतियां। अवैध आप्रवास अलिया बेट यहूदी एजेंसी ने इरगुन और लेही के समर्थन से अवैध आप्रवास का आयोजन किया, जिसमें दसियों हजार यहूदी शरणार्थियों को पैलेस्टाइन लाया गया। जुलाई 1947 में एसएस एक्सोडस घटना, जहां ब्रिटेन ने 4,515 शरणार्थियों को जबरन यूरोप वापस भेजा, एक प्रचार जीत बन गई, जिसने ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। प्रचार अभियान। ज़ायोनी समूहों ने ब्रिटिश नीतियों को यहूदी विरोधी के रूप में चित्रित किया, विशेष रूप से अमेरिका में हॉलोकॉस्ट के प्रति सहानुभूति का लाभ उठाकर इंग्लो अमेरिकी संबंधों पर दबाव डाला। वित्तीय समर्थन। यूनाइटेड ज्यूइश अपील ने 1947 में $150 मिलियन जुटाए, जिनमें से आधा पैलेस्टाइन के लिए था, जो प्रतिरोध प्रयासों को वित्त पोषित करता था। इन कार्यों ने एक अनियंत्रित वातावरण बनाया, जिसमें अनुमानित आर्थिक नुकसान £2 मिलियन और सैकड़ों ब्रिटिश हताहतों के साथ था, जिसने युद्ध से थके हुए ब्रिटेन को अभिभूत कर दिया। ब्रिटिश आत्मसमर्पण, आतंकवाद के सामने झुकना। ब्रिटेन का मंडेट छोड़ने का निर्णय, जो फरवरी 1947 में घोषित किया गया और 14 मई 1948 को पूरा हुआ, ज़ायोनी हिंसा के निरंतर दबाव और व्यापक बाधाओं से प्रेरित था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन £3 बिलियन के कर्ज से जूझ रहा था और अमेरिकी ऋणों पर निर्भर था। पैलेस्टाइन में 1 लाख सैनिकों को बनाए रखना, जो प्रति वर्ष लाखों की लागत लेता था, घरेलू पुनर्निर्माण की मांगों के बीच अस्थिर था। ब्रिटिश जनमत युद्ध और हताहतों से थक चुका, मंडेट के खिलाफ हो गया और मीडिया ने पैलेस्टाइन को एक दलदल के रूप में चित्रित किया। 1 लाख यहूदी शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए अमेरिकी दबाव और विभाजन के लिए सोवियत समर्थन ने ब्रिटेन की स्थिति को और कमजोर किया। इरगुन और लेही की हिंसा, विशेष रूप से किंग डेविड होटल बम विस्फोट और सर्जेंट्स अफेयर जैसे हाई प्रोफाइल घटनाओं ने ब्रिटिश सेनाओं को हतोत्साहित किया और राजनीतिक इच्छा शक्ति को कमजोर किया। इन आतंकवादी कृत्यों ने, जो अराजकता और भय पैदा करते थे, ब्रिटेन की शासन करने की अक्षमता में सीधे योगदान दिया। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र को सौंपकर ब्रिटेन ने स्वीकार किया कि वह हिंसा को प्रबंधित नहीं कर सकता या मंडेट के परस्पर विरोधी दायित्वों को समेट नहीं सकता। प्रभावी रूप से ज़ायोनी चरमपंथ के सामने झुक गया, जबकि पैलेस्टाइनी अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहा। संयुक्त राष्ट्र की मान्यता और सदस्यता, शर्तें और आत्मसमर्पण। संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रसंघ के उत्तराधिकारी के रूप में, ने 1947 में पैलेस्टाइन प्रश्न को विरासत में लिया। इसकी प्रतिक्रिया ने इसराइल की राज्यता और सदस्यता को आकार दिया, लेकिन यह प्रक्रिया ज़ायोनी समूह द्वारा बनाए गए हिंसक संदर्भ से बहुत प्रभावित थी। संयुक्त राष्ट्र का विभाजन योजना और इसराइल की राज्यता। नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 181 पारित किया, जिसमें पैलेस्टाइन को यहूदी 56% और अरब 43% राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव था, जिसमें यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय बनाया गया था। यहूदी एजेंसी ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, इसे राज्यता की ओर एक मार्ग के रूप में देखते हुए, जबकि अरब नेताओं ने इसे खारिज कर दिया, किसी भी यहूदी राज्य का विरोध करते हुए। 14 मई 1948 को, जब मंडेट समाप्त हुआ, इसराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसमें प्रस्ताव 181 का हवाला दिया गया। इसके बाद की अरब इसराइल युद्ध ने 1949 के युद्धविराम समझौतों द्वारा इसराइल के क्षेत्र को मंडेट पैलेस्टाइन के 78% तक विस्तारित कर दिया, जो संयुक्त राष्ट्र के आवंटन से अधिक था। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए शर्तें। इसराइल ने 11 मई 1949 को प्रस्ताव 273-3 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त की, जिसमें 37 मत पक्ष में, 12 विरोध में, ज्यादातर अरब राज्य और 9 अनुपस्थित रहे। प्रवेश निम्नलिखित पर निर्भर था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन। इसराइल ने चार्टर के सिद्धांतों को बनाए रखने का वचन दिया, जिसमें विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और मानवाधिकारों का सम्मान शामिल था। प्रस्ताव 181, विभाजन योजना। इसराइल की घोषणा और संयुक्त राष्ट्र के बयानों ने विभाजन योजना की स्वीकृति की पुष्टि की, हालांकि इसके विस्तारित सीमाओं को युद्ध की वास्तविकता के रूप में मौन रूप से स्वीकार किया गया। प्रस्ताव 194 शरणार्थी अधिकार अनुच्छेद 11 ने पालेस्टाइनी शरणार्थियों की वापसी या मुआवजे की मांग की। इसराइल ने बातचीत के लिए इच्छा व्यक्त की, लेकिन सुरक्षा और जनसांख्यिकीय चिंताओं का हवाला देते हुए बड़े पैमाने पर वापसी का विरोध किया। मानवाधिकार दायित्व, इसराइल से उभरते मानवाधिकार मानदंडों का पालन करने की अपेक्षा की गई थी, जिसमें गैर भेदभाव और अल्पसंख्यक अधिकार शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र का निर्णय निम्नलिखित से प्रभावित था। ज़ायोनी हिंसा 1948 में लेही द्वारा संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ फुल्के बर्नाडोट की हत्या, जो उनके संशोधित विभाजन योजना का विरोध कर रही थी, ने कट्टरपंथियों के समझौता स्वीकार करने को रेखांकित किया। हालांकि इसराइल सरकार ने इस कृत्य की निंदा की, यह अस्थिर संदर्भ को उजागर करता था। भूराजनीतिक समर्थन, अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे के प्रभाव को काटने और हॉलोकॉस्ट के बाद मानवीय चिंताओं को संबोधित करने के लिए इसराइल की स्वीकृति का समर्थन किया। व्यावहारिकता, संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल के विस्तारित क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण को मान्यता दी, स्थिरता को प्रस्ताव 181 की सीमाओं के सख्त प्रवर्तन से अधिक प्राथमिकता दी। इसराइल को स्वीकार करके संयुक्त राष्ट्र ने ज़ायोनी आतंकवाद द्वारा बनाई गई वास्तविकता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने ब्रिटेन की वापसी को मजबूर किया और सैन्य लाभों के माध्यम से एक तथ्यपूर्ण स्थिति बनाई। शर्तें, हालांकि इसराइल द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार की गई थी, ढीली तरह से लागू की गई थी, जिससे इसराइल को पूर्ण अनुपालन से बचने की अनुमति मिली। इसराइल का गैर अनुपालन और मानवाधिकार उल्लंघन। इसराइल की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धताओं पर आधारित थी, लेकिन इसके कार्यों ने महत्वपूर्ण गैर अनुपालन दिखाया, जिसके साथ क्षेत्रीय विस्तार और मानवाधिकार उल्लंघन भी आए। संयुक्त राष्ट्र की शर्तों का गैर अनुपालन। 1. प्रस्ताव 181 विभाजन योजना 1949 में इसराइल की सीमाएं मंडेट पैलेस्टाइन के 78% को कवर करती थी, जो प्रस्ताव 181 द्वारा आवंटित 56% से कहीं अधिक थी। पश्चिमी गलील और निवेक के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों को विजय के माध्यम से शामिल किया गया, बिना अरब राज्य की स्थापना के। विभाजन योजना को पूरी तरह से लागू करने में यह विफलता अरबों की शिकायतों को बढ़ावा देती थी और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे को कमजोर करती थी। 2. प्रस्ताव 194 शरणार्थी अधिकार। इसराइल ने 1948 में विस्थापित हुए लगभग 7 लाख पैलेस्टाइनी शरणार्थियों की वापसी को रोक दिया, भले ही प्रस्ताव 194 में प्रत्यावर्तन या मुआवजे की मांग की गई थी। 1950 का अनुपस्थित संपत्ति कानून शरणार्थियों की भूमि को यहूदी स्वामित्व में स्थानांतरित कर देता था, जनसांख्यिकीय नियंत्रण को प्राथमिकता देता था। शरणार्थी संकट अरब इसराइल संघर्ष का एक आधार बन गया, जिसमें लाखों लोग जॉर्डन, लेबनन और सीरिया में शिविरों में बिना नागरिकता के रहे। 3. संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकार। इसराइल की अपनी अरब अल्पसंख्यक पर सैन्य शासन 1948-1966 ने नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया, जिसमें आंदोलन और राजनीतिक अभिव्यक्ति शामिल थी, जिसने गैर भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। भेदभावपूर्ण भूमि कानून और असमान संसाधन आवंटन ने पैलेस्टाइनी नागरिकों को हाशिए पर धकेल दिया। इन प्रथाओं ने प्रणालीगत असमानताओं को मजबूत किया, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के विपरीत थी। क्षेत्रीय विस्तार। इसराइल की महत्वाकांक्षाएं 1949 की युद्ध विराम रेखाओं से परे थीं। 1956 में इसराइल ने सुएज संकट के दौरान सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के दबाव में वापस हट गया, जो विस्तारवादी प्रवृत्तियों का संकेत देता था। 1967 की 6 दिवसीय युद्ध में इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया, मंडेट पैलेस्टाइन के शेष 22% पर कब्जा कर लिया। पूर्वी यरूशलेम की अनुलग्नक और बस्तियों का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता था, जिसमें 4th जेनेवा कन्वेंशन का निषेध शामिल था, जो कब्जे वाले क्षेत्र में बस्तियों के स्थानांतरण पर रोक लगाता था। 2025 तक 7 लाख से अधिक इजरायली बस्तीवासी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में रहते हैं, जो राजनीतियों द्वारा समर्थित हैं, जो कब्जे को मजबूत करते हैं और पैलेस्टाइनी लोगों को विस्थापित करते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन। कब्जे वाले क्षेत्रों में इसराइल के कार्य दस्तावेजी मानवाधिकार उल्लंघनों का गठन करते हैं। विस्थापन और घरों का विध्वंस, बस्ती विस्तार या दंडात्मक कारणों से हजारों पैलेस्टाइनी घरों को ध्वस्त किया गया है, जो आवास और संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। आंदोलन प्रतिबंध, चेकपॉइंट्स, वेस्ट बैंक बैरियर और गाजा नाकाबंदी पैलेस्टाइनी गतिशीलता को सीमित करते हैं, जिससे काम, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच प्रभावित होती है, जो आंदोलन की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अत्यधिक बल और हिरासत, सैन्य अभियान और प्रशासनिक हिरासत अक्सर बिना मुकदमे के ने नागरिकों की मौत और मनमानी कारावास को जन्म दिया है, जो उचित प्रक्रिया और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। प्रणालीगत भेदभाव, रिपोर्टर्स इसराइल की नीतियों को अपार्टाइड के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें अलगाव, असमान अधिकार और इसराइल और कब्जे वाले क्षेत्रों में पैलेस्टाइनी लोगों के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव का उल्लेख किया गया है। ये उल्लंघन, जो इसराइल की क्षेत्रीय नियंत्रण और यहूदी जनसांख्यिकीय प्रभुत्व की प्राथमिकता से प्रेरित हैं, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की शर्तों, विशेष रूप से मानवाधिकार और शरणार्थी दायित्वों के साथ तीव्र विरोधाभास में है। निष्कर्ष: इर्गुन और लेही जैसे ज़ायोनी चरमपंथी समूहों ने आतंकवादी कृत्यों के माध्यम से जो सैन्य हवाई अड्डों, नागरिक बुनियादी ढांचे, अरब आबादी, विदेशों में ब्रिटिश परिसरों और मॉयनी और बर्नाडोट जैसे अधिकारियों की हत्या पर लक्षित थे, ब्रिटेन को पैलेस्टाइन मंडेट को छोड़ने के लिए मजबूर किया। इन कार्यों ने युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोरियों का फायदा उठाकर शासन को असंभव बना दिया, जिससे संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी हुई। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में विभाजन योजना प्रस्तावित की और 1949 में इसराइल को सदस्य के रूप में स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवाधिकार प्रस्ताव 181 और शरणार्थी अधिकारों के पालन की शर्त पर इसराइल की राज्यता को स्वीकार करके इसके विस्तारित सीमाओं और सीमित अनुपालन के बावजूद ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र ने ज़ायोनी आतंकवाद द्वारा बनाई गई वास्तविकता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसराइल का बाद में गैर अनुपालन विभाजन योजना से परे क्षेत्रों को बनाए रखना, शरणार्थियों की वापसी को रोकना और कब्जे और बस्तियों के माध्यम से मानवाधिकार उल्लंघनों को करना ने इसके संयुक्त राष्ट्र के प्रति दायित्वों को कमजोर किया, जिससे पैलेस्टाइन संघर्ष लंबा हुआ और पैलेस्टाइनी अधिकार अपूर्ण रहे।